நமோ ஹரிஹந்தாணம், நமோ சித்தாணம், நமோ ஆரியாணம், நமோ உவஜ்ஜாயணம், நமோ லோயே திரிகாலவர்த்தி சௌவசாமணம். மங்களம் பகவான் வீரோ, மங்களம் கௌதமோகணி, மங்களம் குந்தகுந்தாரியோ, ஜெயந்த் தர்மோஸ்து மங்களம். சர்வ மங்கல்ய மங்கல்யம், சர்வ கல்யாண காரகம், பிரதானம் சர்வ தர்மானம், ஜெயினம் ஜெயத்து சாசனம். ஓம்கார பிந்து சயுக்தம் நித்யம் தியாயந்தி யோகினம், காமதம் மோக்ஷதம் செய்வ ஓம்காராய் நமோ நம. நம சமய சாராய சுவானுபூத்தியாய சகாஸ்தி சிஸ்வபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தர்ச்சிதே அக்னாந்திமிராந்தானாம் ஞான ஜன் சலாகையா சக்ஷுருன்மிலிதம்யனம் தஸ்மே ஸ்ரீ குருவே நம. ஆத்மா ஜானம் ஸ்வயம் ஜானம் ஜானாத் அந்யத் கரோதி கிம் பர்பாவஸ்ய கர்த்தாத்மா மோஹோ யம் வ்யவஹாரியம். மங்கள்மய் மங்கள்கரன் வீத்ராக விஜ்ஞான் நமுதா ஹி ஜாதே பய அரிஹந்தா தி மகான். ஓம் நம சிதேவிய நம சிதேவிய நம சிதேவிய. மாவீர் பரமாத்மா கா சாசன், குந்த்குன் ஆச்சாரிய பகவான் கி ஆம்னாய், அம்ரச்சந்திர ஆச்சாரிய பகவான் கி பரம்பரா, உஸ்மே பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கா மகாவிதே சே பரக் சேத்ர ஆனா, ஔர் ஜிஸ் அம்ரத் வர்ஷா மே சபி ஜீவோ கோ ஜிஸ் தர ஸ்நான் கரவாத்தே தே, அபி பி அப்னே பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கா ஜோ பிரவச்சன் சுனா, பாவ விபோர் ஹோகர் ஆத்மாமய வஸ்து வியவஸ்தா கோ சாமனே கடி கர தேதே ஹே. நியாய எக் எக் நிகாலே மனோ சஹஜ மே கங்கா பயத்தி ஓ உஸ் தர சே குருதேவ் கே முகாரவிந்த் சே நியாய பரஸ்தே, ஹ்ருதய அத்யந்த புல்கித் ஹோ ஜாதா. பஸ் ஐசா லகே கே கஹா எக் கண்டா பதா ஹி நஹி சல்தா கஹா புரா ஹோ கியா. இத்னி அம்ரத்மய வாணி பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கி. அபி சமயசார பரமாகம் கே அந்தர் மே ஜீவ நாமக் அதிகார் சட்டி காதா, சுதாத்மா கோன் ஹை ஜின்கா ஸ்வரூப் ஜானா சாஹியே ஐசா சிஷ்ய கே பிரஸ்னகே உத்தர் மே ஆச்சாரிய பகவானே அம்ரச்சந்திர ஆச்சாரிய பகவானே ஜோ ஸ்பஷ்டீகரண கியா உஸ்கே ஊபர் பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீ கா ஹ்ருதய பீனா ஜோ ஸ்பஷ்டீகரண ஹை, பூரி வஸ்து கி வ்யவஸ்தா கோ இத்தனா ஸ்பஷ்ட கர்த்தே ஹை மானோ சுதாத்மா ஹாத் மே தேதே ஹோ. सही माने में पूज्य गुरुदेव श्री ने सुधात्मा को हाथ में पिलाया है, प्रत्येक जीवों को भगवान आत्मा घुटाया है, घुटाया नहीं लेकिन पिलाया है. इस बात को सुनने के पश्चात कुछ बोलने का मन नहीं होता, क्या बोले? हे गुरुदेव, आपको पाकर हम सब तो धन्य हो गए. ये आपकी अमृतमय वाणी सुधात्मा को बतलाने वाली, ज्ञायक भाव को खड़ा कर देने वाली, जो अनादिकाल से ज्ञायक भाव समझ में नहीं आ रहा था वो ज्ञायक भाव आपकी वाणी मात्र से समझ में आ जाए, इतनी सरलता से आपने ज्ञायक भाव को पिलाया है, हम आपका उपकार कभी भी भूल नहीं सकते. और उसीलिए सुगानी जी साहब ने पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार अनंत तीर्थंकरों से अधिक कहा. अब इस छठी गाथा के दो पैराग्राफ में, पहला पैराग्राफ जो ध्येय का है और दूसरा पैराग्राफ ज्ञेय और ध्येय पूर्वक ज्ञेय, दोनों ही बात दूसरे पैराग्राफ में समाविष्ट की है. अब वो पैराग्राफ के अंतिम पंक्ति पे अपन है, जिसके अंदर में दो बात कही. पहले तो सुधात्मा कैसा है, ज्ञाय के भाव कैसा है उसका वर्णन किया. उसका वर्णन करने के पश्चात संसार अवस्था में अनादि बंद पर्याय की अपेक्षा से उसके साथ में क्या घटित हुआ, और ऐसा घटित होते हुए भी एक ज्ञायक भाव है उनका स्वभाव से परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़भाव रूप नहीं होता, उसलिए प्रमद भी नहीं और अप्रमद भी नहीं, ये बात कहकर अंत में कहते हैं, वही समस्त अन्य द्रव्यों का भावों से भिन्न पणे उपासवामा आव तो शुद्ध केवाई. अब इस बात की परिभाषा पूज्य गुरुदेव श्री कर रहे हैं कि ज्ञायक को शुद्ध क्यों कहा, 21 नंबर का प्रवचन, 205 नंबर का प्रश्न और उसका अंतिम पैराग्राफ। विनायक भाव और शुभाशुभ भाव रूप परिणमता नहीं है, वह चीज को शुद्ध आपने क्यों कहा? तो कहते हैं शुद्ध तो है ही, कहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ज्ञायक तो शुद्ध तो है ही, वो तो है, लेकिन किसको? बात तो यहां पर है, वस्तु तो अनादि अनंत शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध है, परिपूर्ण शुद्ध है, वो तो है, लेकिन किसको? तो कहते वही जो ज्ञायक भाव है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भाव, अन्य द्रव्य का भाव यानी कर्म, कर्म का रस आदि, विकार इसमें नहीं लेना। यहाँ तो अन्य द्रव्य का भाव लेना, अन्य द्रव्य का भाव से भिन्न भिन्न होते ही विकार से भिन्न पड़ जाता है। क्या कहते हैं, ऐसी एक विधि बतलाई कि जीव की अनादि काल से निमित्त के ऊपर दृष्टि है, और वो निमित्ताधीन दृष्टि होने से जिसी निमित्त के ऊपर दृष्टि जाती है वैसा निमित्तिक भाव यहाँ पे प्रकट हो जाता है। देव शास्त्र गुरु के प्रति लक्ष्य जाने से अहोभाव, स्वाध्याय का भाव, भक्ति का भाव, पूजा का भाव, संसार के निमित्त के प्रति लक्ष्य जाने से अशुभ भाव, माने जैसा निमित्त ऐसा नैमित्तिक यहाँ पे हो जाता है। तो अब एक ऐसी विधि बतलाते हैं कि नैमित्तिक यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो, निमित्त से दृष्टि हटाने की बात करते हैं। निमित्त के ऊपर दृष्टि जाती है तो नैमित्तिक खड़ा होता है, अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न पने उपासवामा होता, अन्य द्रव्य के भाव, माने यहाँ राग भाव की विकार भाव की चर्चा नहीं है, यहाँ पे अन्य द्रव्य का भाव यानी कर्म, कर्म का रस आदि, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, इनका ही जो कर्म का रस, क्योंकि भाव कर्म का रस भी द्रव्य कर्म के अंदर में है, अनुभाग है उसके अंदर में। तो पर पदार्थ के ऊपर लक्ष्य ही नहीं जाए तो नैमित्तिक भाव का जन्म ही नहीं हो और सीधा वस्तु के ऊपर आवे और अनुभूति हो जाए, ऐसा अद्भुत विधान। अन्य द्रव्य, समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न पड़े, अन्य द्रव्यों का भाव से भिन्न, मैंने अपना जो ज्ञायक भाव है वो अन्य द्रव्य के भाव से भिन्न तो है, लेकिन उसके भिन्न पड़े उसकी उपासना नहीं की। यदि उसकी भिन्न पड़े उपासना है तो भिन्न, माने तो भिन्न, न माने तो भिन्न, वस्तु तो ऐसी ही है, लेकिन जब उसको भिन्न पड़े देखता है, मानता है, ऐसी वस्तु के ऊपर उसकी नजर जानती है तो उसकी उपासना की, सेवा की, ऐसा कहने में आता है। क्या कहते हैं, देखिए गुरुदेव श्री, अन्य द्रव्य ना भाव थी भिन्न पड़ता, विकार थी भिन्न पड़ी जाए, भाव एम केवू है ने, अन्य द्रव्य ना भाव, एटले अत्यारे पुण्य पाप ना भाव ये अहीं नहीं, अन्य द्रव्य नो जे भाव अनुभाग एनी शक्ति भाव एना थी भिन्न, एनु लक्ष्य छोड़ी ने एना थी भिन्न, जयरे एनु लक्ष्य छोड़े त्यारे विकार नो लक्ष्य पण छूटी जाए छे। हारे जब पर पदार्थ का लक्ष्य छूटता है, निमित्त का लक्ष्य छूटता है, तो उसके साथ ही राग भी छूट जाता है, क्योंकि जहाँ निमित्त का लक्ष्य छूटा तो स्वभाव के ऊपर आया, जहाँ स्वभाव का लक्ष्य हुआ तो नैमित्तिक यहाँ पे उत्पन्न ही नहीं हुआ, और जैसा स्वभाव तैसा स्वभाव अनुभूति के अंदर में आ गया। तो यहाँ आश्रव उत्पन्न हो, फिर आश्रव को टाले और बात ही नहीं रखी, आश्रव का जन्म ही न हो और सीधा समर हो जाए, ऐसा विधान बतलाया। समस्त अन्य द्रव्य के भावों से भिन्न पड़े उपासवामा आवता शुद्ध कहवाई छे, है तो शुद्ध, है तो शुद्ध, लेकिन किसको? जो अपने स्वभाव की उपासना करे उसको, जो स्वभाव का सत्कार करे, कैसे करे? समस्त अन्य द्रव्य भावों से भिन्न अपने स्वभाव की उपासना करे, उपासना माने सत्कार करे, आदर करे, सम्मान करे, उसका लक्ष्य करे, उसकी नजर करे, उसकी दृष्टि करे, उसको शुद्ध के जानने में आता है, शुद्ध जानने में आता है, उसी को शुद्ध कहने में आता है। ये गुरुदेव श्री इस बात की अत्यंत स्पष्टता करते हैं, अपन दो पैराग्राफ छोड़ देते हैं, फिर देखिए, अन्य द्रव्यों ने द्रव्य ना भावनु लक्ष्य छोड़ी, जे अन्य द्रव्य ना भाव में अस्तित्वपणानु जोर छे तेने छोड़ी दई, अने एनाथी छोड़ियो एटले अंतर चैतन्य ज्ञायक भाव ए तरफ तेनी पर्याय गई, ए पर्याय एनु सेवन कर्यु, ये पर्याय जे वर्तमान ज्ञान ने श्रद्धा पर्याय छे, ये परना लक्ष्य ने छोड़ी ने સ્વના ચૈતન્યના નાયક ભાવમાંના લક્ષમાં જ્યાં આવ્યો ત્યારે એની પર્યાયમાં શુદ્ધતાનું સેવન થયું, એટલે કે શુદ્ધતામાં એકાગ્રતા થઈ, એકાગ્રતા થઈ એમાં જણાણું કે આ શુદ્ધ છે. જીણી વાત છે બાપુજી. ક્યા કહેતે હૈ જહાં અન્ય દ્રવ્ય ઓર અન્ય દ્રવ્ય કે ભાવો કા લક્ષ છોડા ઓર અન્ય દ્રવ્ય કે ભાવ કે અસ્તિત્વ મેં ઉનકા હમેશા જોર જાતા થા, વો જોર છૂટ ગયા ઓર વહાં સે છૂટા તો અંતર ચૈતન્ય જ્ઞાન ભાવ કે ઉપર ઉનકી પર્યાય આ ગઈ, પર સે છૂટા તો સીધા સ્વ પે આ ગયા. જબ સ્વ પે આ ગયા તો રાગ કી બાત ખડી નહીં હોઈ, ઉત્પન્ન હી નહીં હુઆ, આશ્રવ કા જન્મ હી નહીં હુઆ, સીધા સંવર હો ગયા. કેસે હુઆ તો કે ઉસ પર્યાય ને દ્રવ્ય કા સેવન કિયા. અબ ઉનકી યે પર્યાય જો વર્તમાન જ્ઞાન ઓર શ્રદ્ધા કી, વર્તમાન જ્ઞાન ઓર શ્રદ્ધા કી પર્યાય મેં ક્યા હોતા થા તો કે જ્ઞાન યે માનતા થા કે મેં પર કો જાનતા હું, ઓર શ્રદ્ધા યે માનતા થા કે મેં પર કા કરતા હું, પર કા કરતા માનતા થા ઓર પર કો મેં જાનતા હું એસા માનતા થા. એ જ્ઞાન ઓર શ્રદ્ધા કી પર્યાય જો થી જિસકે અંદર મેં વિપરીતતા થી. અબ વો વિપરીતતા કેસે મિટી તો કે પર કા લક્ષ છોડને પે, સ્વ કે ચૈતન્ય જ્ઞાયક ભાવ કે લક્ષમાં જહાં આયા. દેખિયે બાત સિર્ફ લક્ષ કી હૈ, બાત સિર્ફ નજર કી હૈ, બાત સિર્ફ દ્રષ્ટિ કી હૈ. જાનને મેં તો જ્ઞાયક ભાવ આ રહા હૈ, લેકિન ઉસકી દ્રષ્ટિ વહાં પર નહીં હૈ. અબ ઉસકી દ્રષ્ટિ વહાં પર નહીં હોને કે વજહ સે વો અનુભૂતિ મેં નહીં આતા. કરના કુછ ભી નહીં હૈ, જ્ઞાયક ભાવ શુદ્ધ હૈ પહેલી વાત. દૂસરી વાત, જ્ઞાયક ભાવ જાનને મેં આ રહા હૈ. દૂસરી વાત, વો જ્ઞાયક ભાવ કે ઉપર જહાં દ્રષ્ટિ ગઈ કે મેં હું, તો વો શુદ્ધ જાનને મેં આયા, શુદ્ધ જાનને મેં આયા કે જ્ઞાયક ભાવ શુદ્ધ હૈ. શુદ્ધતા પ્રગટ જો હોઈ પરિણામ કે અંદર મેં, વો દ્રવ્ય કે લક્ષ્ય હોઈ, લેકિન દ્રવ્ય ઉસકે અંદર અનુભૂતિ કે અંદર મેં ક્યા આયા કે યે શુદ્ધ હૈ એસા જાનને મેં આયા. એ દ્રવ્ય શુદ્ધ હૈ એસા જાનને મેં આયા, તો દ્રવ્ય શુદ્ધ એસા જાનને મેં આયા ઉસકા મતલબ દ્રવ્ય પર્યાય મેં નહીં આયા, જાનને મેં આયા. દ્રવ્ય પરિણામ મેં આ જાય તો પરિણામ કા નાશ હોતે હી દ્રવ્ય કા નાશ હો જાય, તો દ્રવ્ય પરિણામ મેં નહીં આતા, લેકિન જેસા દ્રવ્ય હૈ એસા જાનને મેં આતા હૈ. જો દેખીએ વો શબ્દ હૈ યહાં પર, શુદ્ધતા મેં, શુદ્ધતા મેં એકાગ્રતા હોઈ, એકાગ્રતા હોઈ ઉસમે જણાણું કે આ શુદ્ધ છે. સ્વભાવ કે અંદર મેં એકાગ્રતા હોઈ, જો એકાગ્રતા કે અંદર મેં જો શુદ્ધતા હોઈ, શુદ્ધતા કે અંદર મેં જાનને મેં આયા કે યહ શુદ્ધ હૈ. અનુભૂતિ મેં તો યહ આતા કે મેં હું, લેકિન જબ બહાર આતા તબ પતા ચલતા કે જેસા શુદ્ધ સ્વભાવ હૈ વૈસા જાનને મેં આયા. જબ ભેદ સે વિકલ્પ સે ઇસ બાત કો દેખતે હૈ તબ ક્યા સમજ મેં આતા કે પર્યાય મેં દ્રવ્ય નહીં આયા, લેકિન પર્યાય કે અંદર મેં જેસા દ્રવ્ય થા એસા દ્રવ્ય જાનને મેં આયા. ક્યા જાનને મેં આયા કે યહ શુદ્ધ હૈ એસા જાનને મેં આયા. ઓર વાસ્તવિકતયા તો અનુભૂતિ કે અંદર મેં ના દ્રવ્ય હૈ ના પર્યાય હૈ, જો કુછ ભી હૈ વો આત્મા હૈ. ભેદ રહેતા હી નહીં અનુભૂતિ કે અંદર મેં, અભેદ અનુભૂતિ હોતી હૈ. ધ્યેય સ્વાભાવિક અભેદ, ઓર જો ધ્યેય હુઆ, ધ્યેયપૂર્વક જો ધ્યેય હુઆ, વો ધ્યેય ભી ક્ષણિક નયા ઉત્પન્ન હોતા હુઆ અભેદ હૈ. ઉસકે અંદર મેં પર્યાય કે અંદર મેં દ્રવ્ય કી અનુભૂતિ હુઈ એસા નહીં હોતા. અનુભૂતિ કે અંદર મેં તો જો ભી હૈ વો આત્મા હી હૈ, મેં હી હું, અકર્તા હી હું, એસી અનુભૂતિ હોતી હૈ. ફિર વિકલ્પ મેં આને પર પતા ચલતા હૈ કે આનંદ આયા તો પતા ચલા કે ઓહો આત્મા કા દર્શન હો ગયા. આનંદ સે સ્વસંવેદન સે પતા ચલતા હૈ. ઓર જબ વિકલ્પ મેં આને કે પશ્ચાત એ પતા ચલા કે જેસા શુદ્ધતા એસા શુદ્ધ જાનને મેં આયા. કિસે શુદ્ધ જાનને મેં આયા તો ભી બાત કહી કે દ્રવ્ય મેં દ્રવ્ય કા સેવન કિયા. કિસે સેવન કિયા, જ્ઞાયક ભાવ કા લક્ષ્ય મેં જહાં આયા. તો બાત સિર્ફ લક્ષ કી હૈ, લક્ષ યાને અહમ કી હૈ, મેં હું એસા જહાં લક્ષ ગયા. દ્રવ્ય જાનને મેં તો આ રહા હૈ, પરિણામ કે અંદર મેં જ્ઞાન પર્યાય મેં જ્ઞાયક જાનને મેં તો આ રહા હૈ સભી કો. વો ભી ગુરુદેવ બહુ ગજબ કી સ્પષ્ટીકરણ કરેંગે અભી, કે જ્ઞાયક તો જાનને મેં આ રહા હૈ, લેકિન જહાં ઉસકે ઉપર દ્રષ્ટિ ગઈ, ઉસકે ઉપર લક્ષ ગયા કે મેં હું, મેં હું, એસા જહાં લક્ષ ગયા તો અનુભૂતિ હો ગઈ. તો એ આત્મા કા લક્ષ્ય જાતે હી ઉસકા સેવન કિયા, ઉસકા સત્કાર કિયા, ઉસકા આદર કિયા, ઉસકા સન્માન કિયા, વો મેં હું એસા જાના ઓર માના. જ્ઞાન કી ઓર શ્રદ્ધા કી પર્યાય જિસકે અંદર મેં વિપરીતતા થી, વો અવિપરીત સ્વભાવ રૂપ પરિણમિત હો ગઈ. જેસા સ્વભાવ હૈ ઉસ રૂપ જ્ઞાન ઓર ઉસી રૂપ શ્રદ્ધાન, મેં હું એસા શ્રદ્ધાન ઓર મેં હું એસા જાના, દોનો હી જ્ઞાન ઓર શ્રદ્ધાન एक साथ युगपदेय स्वभाव की तरफ झुकती हुई उत्पन्न हो जाती है, उसका नाम अनुभूति है। उसके अंदर में जानने में आया कि यह शुद्ध है। चैतन्य धाम प्रभु स्वयं ज्योति सुख धाम एनु सेवन एटले परना आश्रय नु लक्ष्य छोड़ी दई अने स्वचैतन्य ज्ञायक भाव तेनु लक्ष्य करता। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट बात सिर्फ लक्ष्य लक्ष्य और लक्ष्य की है, कुछ करने की नहीं है। क्योंकि वस्तु संपूर्ण है, वस्तु परिपूर्ण है, वस्तु नित्य है, वस्तु कृत्य है, वस्तु अनंत गुणमयी एक पदार्थ है, वस्तु स्वभाव से परिपूर्ण नित्य उद्योत रूप स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ये बात आचार्य भगवान कह चुके हैं, इसलिए कहते हैं चैतन्य धाम प्रभु स्वयं ज्योति सुख धाम। स्वयं ज्योति सुख धाम उनका सेवन यानी पर का आश्रय का लक्ष्य छोड़कर, पर में भी करना कुछ नहीं था, कर नहीं सकता था कुछ भी, लेकिन पर का लक्ष्य था और लक्ष्य में उसमें अपनत्व होता था और अपनत्व के कारण वो दुखी होता था। अब वो कहते हैं कि पर का आश्रय का लक्ष्य छोड़कर और स्वचैतन्य ज्ञायक भाव उनका लक्ष्य करते हुए, पर का आश्रय का लक्ष्य छोड़कर स्व का चैतन्य का आश्रय करते हुए लक्ष्य करते हुए, वो लक्ष्य कब हो कि जब उनकी पर्याय में उनका तरफ का वलन थाय। लक्ष्य क्यारे थाय? जरे एनी पर्याय में द्रव्य तरफनु ज्ञायक तरफनु वलन थाय। तो बात वलन की है, बात अभिप्राय की है, बात समझ की है, बात उनके निर्णय की है, बात उनके यथार्थ निर्णय की है। जहाँ ऐसा होता है तो पर का लक्ष्य छूटकर स्वभाव का लक्ष्य होता है और उसमें पर्याय में द्रव्य का सेवन हुआ है। तो समस्त द्रव्यों भावों थी भिन्नपणे उपासों में आता वस्तु तो शुद्ध छे, वस्तु तो शुद्ध छे, पण भिन्नपणे उपासों में आता शुद्ध कहवाय छे। उपासवानु एटले सन्मान, उपासवानु एटले आदर, उपासवानु एटले सत्कार, उपासवानु एटले हूँ छू, हूँ ज्ञायक छू, हूँ परमात्मा छू, हूँ भगवान छू, ई उपासना छे। अने एवी उपासना करता शुद्ध कहवाय छे। शुद्ध तो छे पण ई दृष्टिमां आव्यो एटले शुद्ध कहवाय छे, परिणाममां नथी आवतो। अने परिणामनी अंदरमां जेवो शुद्ध छे एवो शुद्ध अनुभवाय छे, પણ જે શુદ્ધ પરિણામની અંદરમાં અનુભવાય છે એ પર્યાયે પોતાની સામર્થ્યથી, પોતાની યોગ્યતાથી, પોતાના વીર્યથી પોતાનો રચેલો જ્ઞાયક છે એને એ ભોગવે છે, એને એ અનુભવે છે, એને એ વેદે છે, એવું છે। પરિણામ મેં જ્ઞાયક નહીં આતા, લેકિન પરિણામ કે અંદર મેં જો અનુભૂતિ હોતી હૈ ઓર પરિણામને અપને જ્ઞાન પરિણામને અપના રચા હુઆ જ્ઞાયક કી અનુભૂતિ હોતી। ऐसी अद्भुत बात है। इन्हें शुद्धपणु जणाणु, पर्याय में शुद्ध दशा में शुद्ध छे एम जणाणु, पर्याय में आ आत्मा आवी गयो एम नहीं, आ शुद्ध छे एम जणाणु, इन्हें शुद्ध कहवाय छे। कहवाय छे शब्द है ना, कहवाय छे क्यों कहा, कहने में आता क्यों, कहने में क्यों आता है कि उसके ऊपर दृष्टि गई, उसके ऊपर लक्ष्य गया, उस लक्ष्य के अंदर में पता चला कि वस्तु शुद्ध है। वस्तु तो शुद्ध है ही, लेकिन दृष्टि गई, लक्ष्य गया, अहम हुआ, तो लक्ष्य शुद्ध है ऐसा कहने में आता है। वो जानने में आया कि वस्तु शुद्ध है। एक कोर भगवान ज्ञायक भाव और एक कोर अनंता द्रव्यो बीजा बदा अँ कर्मनु मुख्यपणु कर्म है, एना तरफनु जे लक्ष्य है, अँ त्रिकाणी थी लक्ष्य तो अनादिथी छूटी गयेलू है, ये पर्याय में आ शुद्ध है एवं तो दृष्टि थी नहीं। ભિન્નપણે સેવતા અન્ય દ્રવ્યોના ભાવને દ્રવ્યથી જુદું પાડતા, જુદું પાડતાનો અર્થ કે દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ્ય જતા, એ લક્ષ્ય ગયું એ વર્તમાનમાં પર્યાયમાં શુદ્ધતા થઈ, લક્ષ્ય ગયું અને વર્તમાનમાં પર્યાયમાં શુદ્ધતા થઈ, લક્ષ્ય જાતે પર્યાય કે અંદર મેં શુદ્ધતા હો જતી હૈ। તત્ક્ષણ જિસ સમય પરિણામ કા લક્ષ્ય દ્રવ્ય કે ઉપર જાતા હૈ ઉસી સમય પરિણામ કે અંદર મેં શુદ્ધતા પ્રગટ હો જતી હૈ। यहाँ पे शुद्धता प्रकट हुई तो उसके अंदर में ऐसा जानने में आया कि ये शुद्ध है, ऐसा जानने में आया। जब जानने में आता है तब मैं हूं ऐसा आता है, लेकिन जब विकल्प में आता है तब पता चलता है कि द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध है। वस्तु समझने योग्य है। गुरुदेव ने पूरे 45 वर्षों के अंदर में भव्य जीवों को पर्याय दृष्टि छूट जाए उसका जबरदस्त पुरुषार्थ किया है। प्रत्येक वाणी के अंदर में प्रभु तेरी पर्याय दृष्टि नहीं छूटती, पर दृष्टि नहीं छूटती। पर की दृष्टि तो करी कहाँ सकता है, वो पर्याय दृष्टि ही कहलाती है। या तो पर्याय के अंदर में कुछ करने की बात, या पर्याय के अंदर में कुछ जानने की बात, या पर्याय के अंदर में भेद ज्ञान करने की बात, या पर्याय के अंदर में अनुभव करने की बात, तो ये सारा का सारा पर्याय दृष्टि का ही अभिप्राय उनका बना रहा। अब ये अभिप्राय मिट जाए, ये पर पदार्थों का जो उपासना आश्रय अवलंबन जो था वो छूट जाए, वो स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाए, तो शुद्धता यहाँ पर हुई, तो ये शुद्ध है ऐसा उसमें जानने में आया, तो शुद्ध है ऐसा कहने में आता है। कहने में क्यों आता है कि वो शुद्ध परिणाम के अंदर में आता नहीं, लेकिन जैसा है वैसा जानने में आता है, अनुभूति में आता है, उसलिए शुद्ध है ऐसा जानने में आया, तो उसको शुद्ध ऐसा कहने में आता है। जिन्हें शुद्ध छे ये पर्याय में अशुद्धता जणाय छे, अने अशुद्धता ऊपर जिनो अनुभव अने पर्याय बुद्धि ऊपर जिनी रुचि दृष्टि छे एने तो शुद्ध छे नहीं। देखिए बात अत्यंत स्पष्ट है, क्या कहते हैं, जिनको शुद्ध है और पर्याय में अशुद्धता जानने में आती है, और अशुद्धता ऊपर ही जिनका अनुभव और पर्याय बुद्धि ऊपर जिनकी रुचि दृष्टि है, उन्हें तो शुद्ध है नहीं। फिर तो यदि बोलता है कि मैं शुद्ध हूं तो उसका कोई माने नहीं रखता। यदि रुचि है अशुद्धता की, रुचि है पर्याय की, रुचि है अनुभव की, रुचि है मोक्ष को प्रकट करने की, तो ये पर्याय दृष्टि है। रुचि के अंदर में वस्तु शुद्ध होते हुए भी तेरे लिए शुद्ध नहीं है, कि जो माने उनके लिए शुद्ध, जो न माने उनके लिए क्या शुद्ध। तेरी रुचि कहां, वलण कहां पर है, अभिप्राय कहां पर है, मान्यता कौन सी है, ज्ञान श्रद्धा किस तरफ परिणमित हो रहा है, स्वभाव के तरफ न प्रभाव के तरफ। उसने माना ही नहीं कि मैं परमात्मा हूं, क्योंकि मैं परमात्मा हूं ऐसा माने तो सीधी परमात्मा के ऊपर दृष्टि जाए, लक्ष्य हो परमात्मा के ऊपर उसी समय, क्योंकि जिस समय परिणाम के अंदर में ज्ञान श्रद्धा सही होता है, अपने स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाता है, उसी समय शुद्धता यहाँ पे प्रकट हो जाती है, उसी समय, क्योंकि जिसने शुद्ध आत्मा को जाना वो शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। तो ये मानता ही नहीं कि मैं परमात्मा हूं, बोलता है लेकिन मानता नहीं है। उसलिए क्या कहा, पर्याय बुद्धि ऊपर जिनकी रुचि और दृष्टि है उन्हें तो शुद्ध है नहीं। वस्तु भले शुद्ध है लेकिन उसे शुद्ध है नहीं। वस्तु तो अनादि अनंत शुद्ध है लेकिन उसको शुद्ध नहीं है। किसको नहीं है, जिसको पर्याय बुद्धि है, पर्याय दृष्टि है, पर्याय में रुचि है, पर्याय में फेरफार करने का अभिप्राय है, पर्याय को उपयोग को स्वभाव के तरफ ले चलने का अभिप्राय है, उसको आत्मा शुद्ध नहीं है। उसने अन्य द्रव्य के भावों से भिन्नपने आत्मा की उपासना नहीं की, सेवा नहीं की। पर्याय द्रव्य की सेवा करता है, किस तरह से करता है, मैं द्रव्य हूं ये द्रव्य की सेवा है, ये द्रव्य का आदर है, द्रव्य का सत्कार है, ऐसा सत्कार उन्होंने कभी नहीं किया। ये बात बहुत गंभीरता से सोचने वाली है। और देखिए गुरुदेव ने सब कुछ कहा, गुरुदेव ने कहने में कुछ बाकी नहीं रखा। अभी ये श्रोता के भी जिम्मेदारी बनती है कि गुरुदेव कहाँ पर क्या बताने चलते हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या उनका हेतु है, क्या प्रयोजन है। इस प्रयोजन को समझे बिना यदि वो एक मुख पाठ की तरह गोखता रहे तो उससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। बात पूरे पूरी समझ की है, बात पूरे पूरे निर्णय की है, बात ज्ञान श्रद्धा का लक्ष्य स्वभाव के ऊपर जाए उसकी है। और ज्ञान श्रद्धा का लक्ष्य स्वभाव के ऊपर जाना माने मैं परमात्मा हूँ ऐसा मानना, ऐसा जानना, इसकी है। देखिए उसके आगे फिर क्या कहते हैं, वही ज्ञायक है, वही तेज, तेज एटले तेज, तेज एटले नायक छे, तेज तेज अंजवाणु नहीं, मैंने तेज मैंने प्रकाश नहीं, तेज मैंने त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप जिसमें पर्याय नहीं है। वो ज्ञायक भाव की बात करते हैं जिस ज्ञायक भाव के अंदर में पर्यायी नहीं है, वही ज्ञायक भाव। कौन सा ज्ञायक भाव? अज्ञान अवस्था में जो ज्ञायक भाव था वो ज्ञानी को अनुभूति में आता है, वो मुनिराज को अनुभूति में आता है, वो केवल ज्ञानी को अनुभूति में आता है, वो एक ही ज्ञायक भाव है। तो तारतम्यता के अंदर में फर्क पड़ता है, वस्तु के अंदर में कोई फर्क नहीं, वही ज्ञायक भाव। ज्ञाकार अवस्था में जो ज्ञायक भाव, ज्ञानाकार अवस्था में वही ज्ञायक भाव, ज्ञान में भी वही ज्ञायक भाव, ज्ञायक संबंधी ज्ञान की बात के अंदर में भी वही ज्ञायक भाव, वो ज्ञायक सो ज्ञायक वही ज्ञायक भाव, एक ही ज्ञायक भाव, वही ज्ञायक भाव जिसमें पर्यायी नहीं है, जिसमें शुभ अशुभ भाव नहीं है, जिसमें प्रमत अप्रमत के भेद नहीं है, ऐसी चीज को, किसी चीज की आराधना करनी है, किसी चीज की उपासना करनी है, वो चीज कैसी है? तो ऐसी चीज है, किसी यह चीज वही ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव वो तो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव वो तो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक भाव वो तो ज्ञायक भाव है। वैसा ही जो ज्ञायक भाव है, जो त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप, अब कैसा त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप? तो कि जिसमें पर्यायी नहीं है, जिसमें शुभ अशुभ भाव नहीं है, जिसमें प्रमत अप्रमत भेद नहीं है, माने मिथ्या दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक, मोक्ष दशा तक जो भेद है वो जिसके अंदर में नहीं है। इसी चीज की, ये भी चीज ने समस्त अन्य द्रव्यों ना भाव थी अनेरा अनेक तीर्थंकर ने आई तो नौ कर्म छे। खरुं तो कर्म जे छे अंदर एना तरफ नो उदय भाव जे छे, एना तरफ नो लक्ष्य छोड़ी दई ने पोते नायक चैतन्य मूर्ति प्रभु छे, चैतन्य चंद्र छे प्रभु। तो वस्तु जिन घट घट अंतर जिन वसे, घट घट अंतर जैन पण मत मदिरा के पानसो मतवाला समझे न। जेनो अभिप्राय राग नो ने रुचि पर नी, एवा रुचि वाला ने आ वस्तु छे तो जिन स्वरूप छे तो शुद्ध, शुद्ध कहो जिन स्वरूप कहो, ज्ञायक कहो, ध्रुव कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो, एकार्थ छे। ए भी चीज होवा छता अज्ञानी ने पर ऊपर लक्ष्य छे, तेती तनी समीप मा ई द्रव्य पड़ियो एनी एने खबर नथी। क्या कहते हैं कि जो चैतन्य चंद्र प्रभु भगवान जो है, वस्तु जो है वो तो जिन स्वरूप है तो शुद्ध, शुद्ध कहो, जिन स्वरूप कहो, ज्ञायक कहो, ध्रुव कहो, अभेद कहो, सामान्य कहो, चैतन्य कहो, परमात्मा कहो, ज्ञायक कहो, भगवान कहो, सब एक अर्थ है। ऐसी चीज होने पर भी है तो ऐसी ही चीज, माने तो भी ऐसी और नहीं माने तो भी ऐसी, लेकिन लक्ष्य पर के ऊपर होने के वजह से ये चीज जो समीप में पड़ी है उसकी उसको खबर नहीं है। पर यह एक समय की समीप में प्रभु पड़ी हो छे, एक समय की पर्याय जो प्रकट होती है उसके समीप में। आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी द्रव्य समीप में पड़ू छी बात आई, प्रभु ये समीप में पड़ो छे એટલે ज्ञान के अंदर में जानने में आता प्रभु वो समीप है। जिस ज्ञान पर्याय के अंदर में पर का प्रतिभास होता है उसी पर्याय के अंदर में ज्ञायक भी जानने में आता है, लेकिन दृष्टि पर के ऊपर होने से, लक्ष्य निमित्त के ऊपर होने से, जिसके ऊपर लक्ष्य जाता है उसमें अपनापन होता है, तो पास में ही ज्ञायक जो पड़ा उसकी उसको खबर नहीं है। भगवान अनाकुल आनंद का नाथ, एक समय की पर्याय जो है ज्ञान की जानने की, ये पर्याय की समीप ही प्रभु है। ज्ञान की जो जानने की पर्याय उसी के समीप, माने उसमें ही प्रभु जानने में आता है। पूरा ध्रुव चिदानंद प्रभु समीप ही पड़ियो छे, पण त्यां तेनी नजर न होवाथी। बात एक है, लक्ष्य और नजर नहीं होने के वजह से, और कोई चीज की कमी नहीं आत्मार्थियों के पास में। पर का लक्ष्य हटावे और स्व का लक्ष्य करे। अब स्व पर का हटाना भी नहीं है, स्व का लक्ष्य करो तो पर का हट गया। हटाने का तो उपदेश होता व्यवहार का, क्योंकि वो एक समय की पर्याय पर का लक्ष्य करती हो वहां से उसको हटाई जाए और स्वभाव के ऊपर लाई जाए, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। कथन शैली है, कथन पद्धति है, व्यवहार की प्रतिपादन शैली ऐसी है, लेकिन जहां स्वभाव के ऊपर लक्ष्य हुआ तो पर के ऊपर से लक्ष्य छूट गया। जिसे दर्पण के अंदर में अपना मुंह दिखता हो, अभी वो मुंह को दिखे तब दर्पण दिखता नहीं है। अब दर्पण तो है वहां पर, लेकिन मुंह के ऊपर दृष्टि होती है तो दर्पण नहीं दिखता। उसी तरह से पर के ऊपर लक्ष्य होता है तो ज्ञान के अंदर में ज्ञायक विराजमान, जानने में आ रहा है। अभी देखिए क्या कहते हैं गुरुदेव श्री। मैं अपनी बात करने के बजाय गुरुदेव की बात कहना चाहता हूं, क्योंकि गुरुदेव की बात अपन सुनते नहीं है। कुछ करने की बात देखिए, कहीं पे करने की बात आई, लक्ष्य कर, नजर कर, वस्तु परे है, समीप, एकदम ज्ञान पर्याय के अंदर समीप पड़ी हुई है। मैंने ज्ञान पर्याय में वो ज्ञायक जानने में आ रहा है। समयसा 17-18 गाथामां तो एम कहूं कि नहीं, वर्तमान ज्ञान पर्याय, प्रभु तारी प्रभुता नो पार न मळे, जेनी प्रभुता नी पूर्णता नो कथन करवो कठन पड़े, एवो तू सर्वोत्कृष्ट नाथ अंदर बिराजे छे। जिनकी प्रभुता का कथन करना कठिन पड़े, ऐसा तू सर्वोत्कृष्ट नाथ, मैंने नाथों का नाथ, प्रभु का प्रभु, भगवंतों का भगवान अंदर विराजमान है। इन्हें एक समय नी पर्याय में पड़े लो, इन्हें ये समीप में छे, ये नजर में आवतो नथी। बात सिर्फ नजर की है, बात सिर्फ लक्ष्य की है, बात सिर्फ दृष्टि की है, करना कुछ नहीं है। वस्तु परिपूर्ण है, वस्तु शुद्ध है, अनादि अनंत शुद्ध है, और वो जानने में भी आ रहा है। देखिए वो भी बात कहते हैं, पर्याय नो स्वभाव तो एवो छे, शू कहूँ, ज्ञाननी एक समय नी पर्याय नो स्वभाव तो एवो छे कि आखू द्रव्य जे जाने छे। ज्ञान पर्याय का स्वभाव कैसा है, एक समय के अंदर में पूरा द्रव्य को ही जानता है। देखिए आखू द्रव्य ज ए जाने छे, द्रव्य ही जानता है, माने पर को नहीं जानता है। पर का प्रतिभास होता है, पर संबंधी ज्ञान पर्याय का ज्ञान होता है, लेकिन पर का ज्ञान नहीं होता, वो पर को नहीं जानता, द्रव्य को ही जानता है। एक समय नी पर्याय जैसे ज्ञान नी उगड़ेली वर्तमान, कौन सी पर्याय की बात करते हैं, जब आत्मा को जानेगा तब जो पर्याय होगी उसकी बात नहीं है। एक समय की पर्याय जो है ज्ञान की उगड़ेली माने प्रकट हुई है जो वर्तमान, उसमें यह द्रव्य ही जानने में आता है। आ द्रव्य ज जणाय छे, ये द्रव्य ज जणाय छे। एकांत किया, प्रभु पर पदार्थ होते का तो प्रतिभास होता है, स्व का प्रतिभास भी होता है और स्व जानने में भी आता है, लेकिन लक्ष्य तेरा उनके ऊपर नहीं है, है? पण अज्ञानीनी दृष्टि त्या नथी। पूरा विषय को संक्षिप्त कर दिया, ज्ञान की जो व्यवस्था है, आत्मा का स्वभाव ज्ञान और ज्ञान की स्वच्छता, ज्ञान की निर्मलता, उसके अंदर में स्वपर का प्रकाशन माने स्वपर का प्रतिभास, उसमें पर जानने में ही नहीं आता और स्व ही जानने में आता है। स्व का प्रतिभास भी और स्व का जानना भी, स्व का सिद्धि भी और स्व का प्रसिद्धि भी, पर की सिद्धि और स्व की सिद्धि और प्रसिद्धि अपने जिनवाणी की स्तुति में लेते हैं कि पर की सिद्धि होती है और स्व की सिद्धि और प्रसिद्धि होती है। उसका मतलब क्या, पर पदार्थों का अस्तित्व, अच्छा द्रव्य का अस्तित्व यह सिद्ध होता है और स्व का अस्तित्व भी सिद्ध होता है और स्व जानने में भी आता है। सिर्फ लक्ष्य नहीं होने के वजह से, दृष्टिवान नहीं होने से, अनादि से अज्ञानी की दृष्टि दया दान व्रत काम क्रोध के परिणाम को या उनको जानने वाली एक समय की पर्याय
भाई जानने में और प्रतिभास में थोड़ा
कर लेंगे उसको अलग से अभी थोड़ा इस विषय को, क्योंकि ये विषय इतना छठी गाथा के अंदर में गुरुदेव श्री ने स्पष्टता की है। अपन प्रतिभास और जानने वाली बात अलग से ले लेंगे, ये विषय मुमुक्षुओं को अत्यंत स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है कि आज के दिन में जो कमी रही है क्या कमी रही। वस्तु परिपूर्ण है, ज्ञान के अंदर में जानने में आती है, प्रतिभासित होती है, ऐसा नहीं जानने में आती, क्योंकि पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है। अब पर्याय द्रव्य से कथनचित अभिन्न है तो द्रव्य की पर्याय है, और द्रव्य की पर्याय में द्रव्य न हो उसको द्रव्य की पर्याय नहीं कह सकते। द्रव्य की पर्याय उसी को कहते हैं जिस पर्याय के अंदर में द्रव्य हो, तब तो द्रव्य की पर्याय कथनचित अभिन्न उसको कह सकते हैं। सर्वथा अभिन्न नहीं है लेकिन कथनचित अभिन्न तो है, सर्वथा भिन्न है श्रद्धा की अपेक्षा से, लेकिन सर्वथा अभिन्न नहीं है, कथनचित अभिन्न है। अब कथनचित अभिन है तो उस पर्याय के अंदर में द्रव्य जानने में आ रहा है, उसकी प्रसिद्धि हो रही है प्रतिपल प्रत्येक समय, ले उसकी दृष्टि नहीं, उसकी नज़र नहीं, उसका लक्ष्य नहीं। तो करना क्या है, लक्ष्य करना, दृष्टि करना, नज़र करना। उसका मतलब क्या, मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करना, उसका नाम लक्ष्य है, उसका नाम दृष्टि है, उसका नाम अहम है, उसका नाम स्वरूप का एकत्व है। वो क्या करता है, दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध के परिणाम के ऊपर उसकी दृष्टि है, या उसको जानने वाली एक समय की परी है, मैं कुछ करता नहीं, मैं तो जानने वाला, किसका, पर पदार्थ का। ये क्या है, त्यागण उभोच है, मिथ्या दृष्टि छे, सत्य दृष्टि थी, विरोध दृष्टि छे। मैं करनार नहीं, जाननार हूं ये बात, मैं जानने वाला हूं। जाननार कहता है, नायक समझाए तो बात साची है, नायक नी बदले ने जानवा वालो समझाए तो इनी दृष्टि भेद ऊपर छे, इनी दृष्टि पर्याय ऊपर छे। इसके अंदर में गुरुदेव आगे बहुत स्पष्टता करेंगे। अपन गुरुदेव को शांति से सुने, कोई भी प्रश्न अंतरंग के अंदर में उठे उस पहले गुरुदेव को सुने, भली भांति सुने, एक बार दो बार तीन बार, और फिर अंतरंग में चिंतन करके गुरुदेव श्री कहाँ ले जाना चाहते हैं। कहीं पे भी करने की बात ही नहीं है, सिर्फ नजर कर, दृष्टि कर, लक्ष्य कर, अहम कर, एकत्व कर। एक कमी है उनकी, और इसके वजह से वो समीप पड़ा हुआ प्रभु उसको दृष्टि में नहीं आता, प्रत्यक्ष प्रकाशमान भगवान आत्मा उसको दिखता नहीं है, क्योंकि उसकी नजर वहां पे नहीं है। नजर वहां पे आ जाए तो बस अनुभूति में आ जाए, तत्क्षण अनुभूति में आ जाए। सत्य जे प्रभु नायक भाव कहो, सत्य जे प्रभु ज्ञायक भाव कहो, सत्यार्थ कहो, भूतार्थ कहो, सत साय पूर्णानंद नो प्रभु, इन्हीं ऊपर इन्हीं नजर नथी। छेद तो पर्याय में जनाए ए वो ए चीज कैसा है, पर्याय में जानने में आ रहा ऐसी चीज है वो, तो जना ये छे। आप पढ़ो गुरुदेव श्री को, ज्ञायक जना ये छे, शू कहूं, ज्ञानी पर्याय में जनाय छे तो एज परमात्मा कहे छे। प्रभु एम कहे छे, त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव एना केड़ाया तो संतो गुरुदेव ए बधा एम कहे छे के प्रभु, एम कहे छे के प्रभु एक वार सांभळ तारी वर्तमान जे ज्ञाननी एक समयनी दशा, तारी वर्तमान जे ज्ञाननी एक समयनी दशा, एनो स्वपर प्रकाशक स्वभाव होवाथी भले तू तारी नजर त्या न होय, पण पर्यायमां द्रव्य ज जणाय छे। प्रभु ये बात समझने योग्य है, ऐसी व्यवस्था क्या है, किस तरह से है, द्रव्य जज तारी वर्तमान दशा भले तारी नजर न हो, तारी पर्याय मतलब जयरे अज्ञान अवस्था है, ई पर्याय अंदर में जाननार जणाय छे, भगवान आत्मा जणाय छे, आबाल गोपाल सौने सदाकाळ अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जणाय छे, तारी नजर नहीं एटलो तारो दोष, तारी नजर छे क्रोध मान भक्ति व्रत इत्यादि परिणाम पर, ત્યાં લક્ષ્ય એટલે ત્યાં પોતાપણું થઈને ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે કે આ મારું છે, થતું નથી, ભ્રાંતિ ઊભી થાય છે, એક તરફ ભગવાન હૈ દૂસરી તરફ ભ્રમણા હૈ, બસ ઇતના હી હૈ, વો ભ્રમણા કો અપના માનતા હૈ ઓર સંસાર મેં રુલતા હૈ, જો સ્વયં ખુદ હૈ ઉસકે ઉપર દ્રષ્ટિ નહીં કરતા, પર જાનને મેં આતા હૈ અજ્ઞાન હૈ, સ્વ પર જાનને મેં આતા હૈ વ્યવહાર હૈ, स्व ही जानने में आता वो निश्चय, ये बात उसको समझना होगा, गुरुदेव के माध्यम से ही समझे, गुरुदेव को सामने रख के समझे, ये बात समझ में आए बिना नहीं रहेगी। पर जानने में नहीं आता तो उसको लगता कि मैं पर को जानता हूं, तो ये अज्ञान है। स्व पर जानने में आता है ये व्यवहार है, और स्व ही जानने में आता है ये निश्चय, फिर निश्चय स्वपर प्रकाशक इत्यादि, तो सारी बातें बहुत है, लेकिन अभी अपना जो विषय है, बात भली भांति एक बार गले उतर जाए, गले नहीं उतरती, बात सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनना उसको कहते हैं कि सुन के समझ में आवे। उस कृपाणु देव के जो सांभड़ी ने समझाया, ने समझी ने समाए, तो ये सांभड़ी कहवाए, समझ में आवे, समझ के समा जाए स्वभाव के अंदर में क्या होता। देखिए भगवान आत्मा त्रिलोकनाथ ऐसा कहता है, प्रभु तू जेवड़ो मोटो प्रभु छो, प्रभु तू जेवड़ो मोटो प्रभु छो, एवड़ो तारी एक समय नी पर्याय मा, अज्ञान मा पण पर्याय मा जणाय छे, अज्ञान मा पण, पहला अत्यार सुधी अज्ञान शब्द नतो वापर्यो, तारी एक समय नी वर्तमान पर्याय उगड़ेली पर्याय एम कीधुं, हवे वधारे स्पष्ट कर दीधुं, अज्ञान मा पण तू जेवड़ो मोटो प्रभु छो ते जणाय ज छे। पर्याय नो स्वभाव छे ज्ञान नी पर्याय सुपर प्रकाशक, तो ई पर्याय मा स्वप्रकाश तो छे पण तारी नजर त्यां नथी। आ तारी नजर का दया करी, भक्ति करी, व्रत पाड़िया, पूजाओ करी, एवो जे राग एना उपर तारी नजर छे, ए नजर ने लईने रागनी आगळ जे ज्ञान पर्याय छे, राग ने जाणनारी ए ज पर्याय सोने जाणनारी छे। जो राग को जानने वाली ज्ञान पर्याय, वही ज्ञान पर्याय सो को जानने वाली है। मैंने ज्ञान पर्याय में राग का प्रकाशन और ज्ञायक का प्रकाशन दोनों एक साथ में होता है, लेकिन पण तारी नजर नहीं हुआ थी। मैंने ये पूरा का पूरा खेल दृष्टि और नजर का है। जैन दर्शन पूरा आधारित है दृष्टि के ऊपर, नजर के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर, अभिप्राय के ऊपर, मान्यता के ऊपर, विश्वास के ऊपर, समझण के ऊपर, इसके बाहर जैन दर्शन नहीं है। देखिए पूरा का जेवड़ो प्रभु जो एवड़ो प्रभु ज्ञान में जणाय छे। क्या करना है तुझे, तुझे तो खाली उसको जानकर उसका विश्वास करना कि हूँ छू, पण तारी नजर त्यां नथी, એના ઉપર તારી નજર છે, નજર રાગની ઉપર તારી નજર છે, નજરને લઈને રાગની આગળ જે જ્ઞાન પર્યાય છે, રાગને જાણનારી એ જ પર્યાય સોને જાણનારી છે, પણ તેમાં તારી નજર નહીં હોવાથી એક કી એક વાત ગુરુદેવ કેટલી સ્પષ્ટ કરતે, તને રાગને પર્યાય જણાય છે, તને રાગને પર્યાય જણાય છે, તને રાગને પર્યાય જણાય છે, તે મિથ્યા બુદ્ધિ છે, મિથ્યા દ્રષ્ટિ છે। प्रभु ये तेरी पर्याय दृष्टि नहीं मिटती है, मैंने पर्याय के ऊपर जो कठोर बात भी की जाती है वो पर्याय दृष्टि मिट जाए ऐसे पवित्र हेतु से की जाती है। उसका हेतु समझना चाहिए, ये अभिप्राय समझना चाहिए, क्योंकि जब तक पर्याय के ऊपर दृष्टि रहेगी, पर्याय के अंदर में कुछ फेरफार करने का, पर्याय के अंदर में अशुद्धता को मिटाने का, पर्याय के अंदर में शुद्धता प्रकट करने का हेतु जब तक रहेगा, तब तक दृष्टि पर्याय के ऊपर में, लक्ष्य पर्याय के ऊपर में, एकत्व पर्याय के ऊपर में, और जब तक पर्याय के ऊपर में एकत्व रहेगा वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या बुद्धि, पर्याय दृष्टि संसारी है, उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर नहीं आती। प्रभु तो पेड़ो छे समीप में ज्ञान पर्याय में, जिस ज्ञान पर्याय में राग जानने में आता, उस ज्ञान पर्याय में ज्ञायक जानने में आता, वो समीप में खड़ा है, बिल्कुल दूर नहीं है। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बीच में कोई अंतर नहीं है, एक गुरुदेव कहता है एक वाड़ जेटलो अंतर छे, एक चूल जितना अंतर है मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, कि वहाँ भगवान आत्मा पड़ा उसके ऊपर दृष्टि कर ले तो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन प्रकट करने का नहीं होता है, सम्यक दर्शन सहज में प्रकट होता है, सम्यक दर्शन प्रकट किया नहीं जाता, वो प्रकट होने वाली व्यवस्था है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान ये फल है, और फल के लिए मेहनत नहीं होती, मेहनत होती है बीज के लिए, सिंचन के लिए, सही समझ के लिए, तत्व निर्णय के लिए, वहाँ पे मेहनत होती है, लेकिन जब समझ सही हो तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तो पूज्य बाबू जी के शब्दों में कहे तो मुफ्त में मिलता है, धर्म मुफ्त में प्रकट होता है, धर्म के लिए किसी को प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ये सहज में प्रकट होने वाली व्यवस्था है। तूने आज तक ऐसा जाना नहीं, माना नहीं, उसलिए दुखी है। एक बार गुरुदेव की बात सुनकर अपने पक्ष को एक तरफ रखकर यदि मध्यस्थ होकर इस बात का विचार करें कि ज्ञान का स्वभाव निर्मल है, अब उस ज्ञान स्वभाव के अंदर में क्या है, पानी निर्मल है। अब निर्मल पानी के अंदर में चंद्र दिखता है, तो जो निर्मल पानी के अंदर में जो चंद्र दिखता है वो चंद्र किसका है? चंद्र का प्रतिबिंब है कि वो पानी का चंद्र है? चंद्र का प्रतिबिंब वो भी एक अपेक्षा है, पानी का चंद्र है वो भी एक अपेक्षा है, पानी पानी और पानी है। ये बात जब समझ में आ जाए तो दृष्टि सीधी द्रव्य के ऊपर जाती है। अभी ये दायाकार का जो दृष्टांत देंगे उसमें भी गुरुदेव श्री बहुत स्पष्ट करेंगे। जीव को जो पक्ष हो गया है ना, गलत पक्ष हो गया। अब पर्याय के ऊपर कोई कठिन बात आवे तो बोलते पर्याय का निषेध करते हैं। पर्याय, अरे प्रभु पर्याय का तो निषेध नहीं है, पर्याय के अस्तित्व का निषेध नहीं है। पर्याय का अस्तित्व तो है, है और है, लेकिन पर्याय का अस्तित्व पर्याय में है। यह अपन भेद ज्ञान की चर्चा करते हैं, नई में दो सत्ता की चर्चा करते हैं। उसके अंदर में पर्याय भिन्न सत्ता है, द्रव्य भिन्न सत्ता है। जब द्रव्य में हूँ ऐसी बात कही जाती है तो पर्याय को परद्रव्य कहा जाता है, पर्याय को अद्रव्य कहा जाता है। जब पर्याय को परद्रव्य और अद्रव्य कहा गया तो पर्याय मात्र की दृष्टि, चाहे सम्यक दर्शन करने के अभिप्राय से ही पर्याय की बात क्यों न हो, लेकिन ये पर्याय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। ये बात इसके अंदर में पर्याय के अस्तित्व के सामने कोई प्रश्न नहीं है, पर्याय की दृष्टि मिटाने का अभिप्राय है। ये अभिप्राय को भली भांति समझे। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप हमेशा ये बात कहा करते हो कि सम्यक दर्शन प्रकट करने का अभिप्राय वो मिथ्या दृष्टि है। प्रभु मिथ्या दृष्टि है। ये कठोराघात लगता हो तो इसका अभिप्राय समझे, क्योंकि जब तक ये अभिप्राय, देखिए हर बार हर बात का खुलासा नहीं हो सकता। ये वक्ता जिसे कुछ कहता है तो श्रोता की भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे किस अभिप्राय से, एजेंडा पे क्या है। द्रव्य दृष्टि कराने की अभिप्राय है तो पर्याय दृष्टि तोड़ाने की बात आएगी ही आएगी और आएगी। और सम्यक दर्शन, दूसरी बात, सम्यक दर्शन की पर्याय को प्रकट किया नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। ये बात भली भांति समझे। ये सम्यक दर्शन सहज में प्रकट होने वाली व्यवस्था है। जब वस्तु के ऊपर, द्रव्य के ऊपर, त्रिकाली ज्ञायक के ऊपर जब अपना लक्ष्य जाता है, उसमें अहम होता है, उसमें एकत्व होता है, तो जो परिणाम उत्पन्न हुआ उस परिणाम का नाम संकीत है, उस परिणाम का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। इसके लिए किसी का प्रयत्न काम नहीं आता। उसलिए सोगानी जी साहब ने ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन एक्सीडेंट से होता है, प्लानिंग से नहीं होता। एक्सीडेंट के लिए कोई प्लानिंग होता है? एक्सीडेंट अचानक होता है। ऐसे कोई आत्मा की अनुभूति करने का प्रयत्न करे तो अनुभूति हो जाए, ऐसा नहीं है। द्रव्य का लक्ष्य करते ही अनुभूति अचानक हो जाती है। जब होती है तब पता भी नहीं चलता, तब तो बस स्व संवेदन होता है, रसास्वादन होता है। फिर जब वो विकल्प में आते हैं तब पता चलता है कि अनुभूति हो गई। अनुभूति हो गई तो अनुभूति के पहले को, परिणाम को शुद्ध नहीं का पक्ष कहा जाता है और अनुभूति को पक्षातिक्रम कहा जाता है। ऐसा क्रम है, ऐसा नियम है, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है।
लक्ष्य करना ही प्रयत्न होना,
लक्ष्य करना ही प्रयत्न, और क्या। પણ જેની દ્રષ્ટિ પરદ્રવ્ય ને પરભાવ ઉપરથી છૂટી ગઈ અને ભેદ પર્યાયના પર્યાય એમાં નથી, એથી પર્યાયમાંથી લક્ષ્ય છૂટી ગઈ। દેખિયા ક્યાં કહેતે કે ભેદ પર્યાય કા પર્યાય ઉસમેં નહીં હૈ, ઉસમેં પર્યાય કા લક્ષ્ય ભી છૂટ ગયા। અન્ય દ્રવ્ય કા ભાવ કા લક્ષ્ય છૂટા, ઉસકા અર્થ અન્ય દ્રવ્ય કા ભાવના, ભાવ સે લક્ષ્ય છૂટા તો રાગ સે ભી છૂટા, ઓર રાગ સે છૂટા તો પર્યાય સે ભી લક્ષ્ય છૂટ ગયા। तो हेतु पर्याय का लक्ष्य छुड़ाना है, पर्याय को नहीं छुड़ाना, क्योंकि पर्याय छूट नहीं सकती, पर्याय का अभाव हो नहीं सकता, पर्याय का अस्तित्व हमेशा रहता है, पर्याय का धर्म उत्पाद जो है वह सिद्ध समय भी रहेगा, उसको कोई पलट नहीं सकता, बदल नहीं सकता। लेकिन पर्यायत्व मिटाना, पर्याय में एकत्व मिटाना, पर्याय का अहम मिटाना, पर्याय में कुछ करने का अभिप्राय मिटाना, पर्याय के अंदर में आत्मा को जानना, ऐसा जानने का ज्ञाता बुद्धि का अभिप्राय मिटाना, उसलिए पर्याय का लक्ष्य छूटते ही द्रव्य के ऊपर लक्ष्य आता है। और द्रव्य के ऊपर जहाँ नज़र हुआ तो जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी अद्भुत से अद्भुत छठी गाथा पूज्य गुरुदेव श्री के चरण कमल के नीचे बैठकर अपन भली भांति समझे, अच्छी तरह से समझे। इसके अंदर में सब कुछ, सारा जैन दर्शन है, अद्भुत से अद्भुत जैन दर्शन। और अद्भुत से अद्भुत जैन दर्शन की महिमा जब ये बात समझ में आती है तब समझ में आती है कैसा जैन दर्शन अपने को मिला, कैसे गुरुदेव श्री मिले। उसने वस्तु की व्यवस्था देखिए, द्रव्य ज जणाय छे, तो वो तब उसको एकांत समझ में आना चाहिए कि गुरुदेव से ऐसा क्यों कह रहे, ऐसी वस्तु की व्यवस्था है, तेरा लक्ष्य वहाँ पे नहीं है, इतना तेरा दोष, तब करना क्या, तो लक्ष्य कर, ऐसा तू मान, ऐसा तू समझ, द्रव्य के ऊपर दृष्टि कर कि मैं परमात्मा हूँ, मैं हूँ ऐसा माना तो अनुभूति होगी। ऐसी अनुभूति सभी के अंतकरण में सहज मात्र में उसी मंगल भावना के साथ, क्योंकि इसके बाद कहे तो एक बार जहाँ प्रभु छे नजर करना शब्द से जुड़ना।